बिजली का बिल इतना आया, मुझे यूं लगता है कि सारा डिफेंस जो है ना वो मेरे घर से उसकी बिजली जा रही है। अब आप ये देखिए आईपीपी के खिलाफ जो है वो आपके साथ कम से कम 3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, मतलब है। अब लोगों की जो तवज्जो है ज्यादातर वहां पे है। मैं आपको जो सवाल है ना कि भाई ये जो बांग्लादेश के जो कोटा वाला सिस्टम है ये पाकिस्तान में चल रहा है, ये भी गलत है। यानी इसमें कई दफा लिखा भी है, कहा भी है, टीवी इंटरव्यू कहे, ज्यादा वहां भी हो रही है, लेकिन ये कोई पता नहीं होता आप कौन सा जो है वो कौन सी चिंगारी जो है वो बढ़ के शोला बन जाए।
ये सर सिर्फ कोटा सिस्टम की बात ही नहीं, हमने पिछला प्रोग्राम जो किया था आप सोलर पैनल्स की ही बात कर लें कि जो मुक्तदिर लोग हैं, जो अशराफिया हैं, जब उन्होंने उनकी फैमिलीज या उनके मेंबर्स सोलर पैनल्स उनके आने होते हैं तो सब्सिडीज मिल जाती हैं, हर चीज खुल जाती है, मगर आम आदमी बेचारा उस कारोबार में भी नहीं हाथ डाल सकता। एंड आई गेव यू एन एग्जाम्पल, मेरे अपने ऑफिस में शख्स है जिसके दोस्त ने, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा सप्लायर है सोलर पैनल्स में, आप यकीन कीजिएगा कि वो आदमी कभी भी, वो लड़का जो कराची में रहने वाला है, कभी भी वो सोलर पैनल नहीं ले सकता कि उस पर उसकी ड्यूटियां इसको इतनी पड़नी है कि उस आदमी लड़के ने मुंह के बल गिरना है। आप सिर्फ कोटा सिस्टम जॉब की बात ना करें, आपकी आला जॉब्स में आला अफसर फौज के जब रिटायर हो जाते हैं अपनी पूरी पेंशन लेते हैं और उसके बाद वो वहां आ जाते हैं, आप एडहॉक पे जजेस ले आते हैं, आप अपने रिटायर्ड जजेस को लेके आ रहे हैं, जो नीचे वाले जजेस हैं उनको आप ऊपर लेके जाने के कायल नहीं है। आप अदरवाइज अगर तकरारियों के बारे में भी देख लें तो वहां पर भी कोटा सिस्टम है, सिफारिश और रिश्वत के जरिए ही पोजीशन मिलती है। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है ना वो अदालत लड़ सकता है, ना वो केस जीत सकता है, ना वो अपने बच्चे का इलाज कर सकता है। मैं अब आपको फोन दिखाती हूँ, मेरे फोन में 4 लोग ऐसे हैं कि एक औरत का बच्चा कैंसर से कीमो होने वाली है, उस औरत ने मुझे अपने बच्चे की तस्वीर भी भेजी है, उसके पास पैसे भी नहीं है बच्चे की कीमो कराने के लिए, और मैंने हर एक को ये जवाब दिया व्हाई डोंट यू होल्ड अकाउंटेबल टू योर पॉलिटिशियन। तो वो लोग आपको अकाउंटेबल करेंगे, वो लोग आपके घरों का सामान उखाड़ उखाड़ के लेके जाएंगे। आज हसीना वाजिद तो चली गई, उनकी पार्टी के तकरीबन 49 बंदे हैं जिनको कुट कुट के मार मार के इन्होंने मार दिया है, क्योंकि उन बच्चों की भी वो भी वैशी बन गए। मेरा कंसर्न सिर्फ ये वाला है, अगर आप बिहाइंड द डोर मुलाकात कर रहे हैं, अगर आप अपनी गलती करने के बाद अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं तो बी बिल क्लिंटन, कम ऑन द टेलीविजन, आंख से आंख मिलाएं कि यस वी डिड मिस्टेक एंड नाउ वील डू द राइट थिंग। क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
आप ये मेरा ख्याल है कि आपका ये प्रोग्राम देखा जाता है, आपके सवाल तो पहुंच गए होंगे। मैं इन्हीं सवाल का जवाब 2 दिन पहले एक टीवी मीडिया पे, मैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो मैं बात कर रहा था, मेरा यही इन्हीं बातों पे जवाब हो रहा था कि पाकिस्तान की जो जरूर हाली है, अभी बांग्लादेश की बात वहां पे नहीं हुई थी, बांग्लादेश के वाक्य से 1 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो इसी में बात हो रही थी कि पाकिस्तान को जिस कदर मुश्किल हालात में दो चार कर दिया गया है। लोग देखिए, मैं आपको बात, किसी ने पूछा था भूखे अब से दो उसने कहा 4 रोटियां। अभी पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा मसायल जो है ना, मतलब वो है कि खर्चा चल नहीं रहा, कैसे किया जाए, गर्मी शदीद है, फिर बारिशें होती है इतनी ज्यादा, बारिशों का अलग से नुकसान हो जाता है, और काम धंधा जो खत्म होता जा रहा है, लोग अब जो लोग हैं वो तो फिर लूटने पे आ जाएंगे, ये किसको नहीं पता। अब आप ये देखिए ना, खुदा ना करे कि वहां पे जो बड़े लोग हैं उनको कुत्ते जो है दूध भी है, और गरीब का जो बच्चा है, जैसे केमो की बात करें, केमो भी नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे आखिर पे, वो मैदान में निकलाएंगे, वो कहेंगे हम खुद मर जाते हैं। आपको याद नहीं कि आपको मैंने मजमून भेजा था कि लोग जो है खुदकुशियां नहीं करेंगे तो खुद कुछ बम्बार बन जाएंगे। आपको लिखा था, आपके तमाम सवालों को जवाब उस कॉलम में जो आ गया हुआ है जो मैंने हफ्ता पहले आपको भेजा था। तो जो जितनी भी आपने बातें की हैं बिल्कुल सही बातें की है, ये सही मसाइल आपने उजागर किए हैं, खुदा करे कि आपकी ये बातें फिर वो सुने। मसला तो ये है कि ये नहीं खाली वो सुने, खुदा करे कि इसके हल की तरफ तवज्जो दे इस मुल्क के, खुदा ना करे को और ऐसा हंगामा ना हो जाए, ऐसा ब्रशअप ना आ जाए, मतलब किसे संभालना मुश्किल हो जाए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं यहां से आपको लेके जाना चाहती हूं। मुझे लगता है ये 21वीं सदी भी है, और दुनिया में आप ही का एक आर्टिकल निकालने की कोशिश कर रही थी, मुझे बड़ा प्यारा लगा आर्टिकल मैंने जब उसको पढ़ा, मगर हम में से हर आदमी जो है ना वो हर चीज को किसी न किसी, बहुत से लोग भुट्टो साहब के मारे जाने के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने कोई और शायद गलत फैसला किया था तो उनकी इबरतनाक मौत हुई। आपका एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल आज मेरे से के जिसमें आपने लिखा कि फिर चिरागों में रोशनी न रही, और आपने कहा कि कौमों की जिंदगी में 50 और 100 साल लम्हों पर मोहित होते हैं। मेरे लिए 50-60 साल गुजारना मौत बन गया, मगर कौमों की जिंदगी में 50-60 साल लम्हों पर मोहित हुआ करते होते हैं। जिसमें आपने बांग्लादेश की पूरी स्टोरी का भी जिक्र किया, और जनाब 75 में मुजीबुर रहमान से लेके आप तशरीफ लाए हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनके भाइयों की असैसिनेशन तक आप तशरीफ लाए हैं। आज देर वॉज अ टाइम के बरतानिया से सूरज चढ़ा करता था और बरतानिया में ही सूरज गुरूब हुआ करता था। जर्मनी की आप बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लें कि फ्रांस और जर्मनी ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख दिया था और फिर ताकत में आया था अमेरिका। आज वो G7 कंट्रीज जो एक वॉर हुई थी जब यूक्रेन की, तो इनके एक जर्नलिस्ट ने लिखा था ओ दीज आर द पीपल विद द ब्लू आईज एंड ब्लॉन्ड हेयर, जिसमें उसने अगर यमन की लड़ाई होती है या अफ्रीका की लड़ाई होती है या अफगानिस्तान की लड़ाई होती है तो उनको थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लोग समझते हुए धतकारे हुए लफ्जों से उनका इस्तेमाल किया था। आज जर्मनी में फसादों की जड़, फ्रांस की अगर जिक्र कर लेते हैं तो फ्रांस में रिसेंट इलेक्शन पे भी पुलिस को नामजद किया, अपॉइंट किया गया था, और क्या बुरा हाल और बोंके दिहाड़े थे। आज इंग्लैंड की अगर मैं बात करती हूं तो इंग्लैंड में शदीद हंगामे जारी हैं। क्या कहानी अंग्रेज इंग्लैंड सुना रहा है? ये वो मुल्क है जिसकी सल्तनत पे कभी सूरज गुरूब चढ़ता भी इधर से था तो गुरूब भी इधर से होता था। किस तरफ को चल पड़ा इंग्लैंड?
देखिए बात यह है कि ये पहली दफा आज टीवी, जब आप तो माशाल्लाह खुद खबरों की दुनिया में रहती हैं, मुझसे ज्यादा बाखबर भी हैं, आप देखिए कल पहली दफा बरतानी के वजीर आजम ने, अभी महीना तो हुआ, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ उसे, 2-3 हफ्ते हुए में आया हुआ, तो उसने पहली दफा 70 सालों में पहली दफा किसी वजीर आजम ने फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का हुक्म दे दिया कि सड़कों पर आने के लिए। और ये शुरू हुआ था हमारे यहां हल, मैनचेस्टर के पास एक इलाका है हल, वहां पे बरतानी के लोगों ने, बरतानी हुकूमत ने, जो असाइलम सीकर थे, क्योंकि लंदन बहुत महंगा है, यहां पे किराए बड़े महंगे हैं, रहायश बड़ी महंगी है, तो उन्होंने वहां हल जो है इसके मुकाबले देहात सस्ता है, तो वहां पे कुछ होटल हायर किए थे, 5-6 होटल, जहां पे जितने असाइलम सीकर वहां पे भेजे हुए थे। सबसे पहले हमला वहां पे हुआ, उन पे हुआ, मारा गया, एक बच्ची को मार दिया गया बकायदा तौर पर, जो असाइलम सीकर की बच्ची थी उसे मार दिया गया, अफवानी बच्ची थी, और दूसरा और भी आगे शुरू हुआ, उसे बढ़ता बढ़ता फिर ये और पिछले शहर में आ गया, और आज की कैफियत ये है कि आज ये लंदन, दो दिन पहले लंदन में भी आ चुका है, ये राइट लंदन में आ चुके हैं, नॉर्थ लंदन के अंदर राइट हुए हैं, ऑक्सफोर्ड जब मेरे दाया भी, यानी मेरे जिससे मेरा आपके चेहरा इस तरह नॉर्थ लंदन है और पीछे मेरी पुष्ट के ऊपर ऑक्सफोर्ड है, वहां भी ऑक्सफोर्ड हुआ है। तो आज मुझे मुसलसल खबरें आ रही थी, और आज देखिए कि बाकायदा तौर पर अब हमारी कमेटी ने बैठ के ये सोचना शुरू कर दिया है कि किस तरह इस अफरीत का किस तरह मुकाबला किया जाए। बच्चों को स्कूल भी, अभी तो बच्चों को छुट्टियां हैं स्कूलों के अंदर, अभी यहां पे कुछ इलाके ऐसे हैं, बिजनेस के इलाके ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल एशियन है, मिसाल के तौर पर साउथ हॉल है हमारे पास, ग्रीन स्ट्रीट है, ईलिंग है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बकाया तौर पर एशियन, एशियन में बात यह है कि उसमें पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, एशिया के मुल्कों में लोगों ने कारोबार कर रखे हैं, दुकानें हैं छोटी छोटी, या दूसरी बड़ी बड़ी दुकानें भी, स्टोर भी है। अब मसला यह है कि यहां भी एक तफावत तो, एक फर्क तो आ चुका है, वो जब ये देखते हैं कि एसी जो है बड़ा वेल ऑफ है, इसके पास गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसके घर बड़े अच्छे हो गए हैं, या दुकानें कारोबार कर रहे हैं, खुद उनके पास कुछ नहीं है। अब मसला यह है कि ये लोग जितने भी आए हैं बकायदा तौर पर यहां मेहनत करते हैं, आपको पता है यहाँ टैक्स का सिस्टम है, ये लोग टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स देकर अपना जिंदगी गुजारा करते हैं, मेहनत से मकान लेते हैं, मकानों की मॉर्गेज दी जाती है, सारे काम करते हैं, लेकिन ये इसके पीछे जो एक नई थ्योरी जो सामने आ रही है आस्ता आस्ता, अगर आप उसे कहेंगे इसको मैं कन्फर्म कर दूं, कन्फर्म इसलिए नहीं हो सकती, जो रियाती तौर पर जो कॉन्स्पिरेसी चलती है उसके सबूत पीछे छोड़े नहीं जाते। आपको याद होगा कि अक्टूबर से इसराइल की गजा में जो है उस बुरी तरह जंग हो रही है, जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने है, दोहराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सारी दुनिया में मुजाहरे हुए, आपके कनाडा में मुजाहरे हुए, अमरीका में हुए, बरतानिया में कुछ ज्यादा मुजाहरे हुए, اسرائیل کے خلاف. اب اسرائیل برطانیہ کے بارے میں اتنے بڑے ہنگامے دیکھ کے وہ کھلا گیا ہے. اس نے کبھی اتنے بڑے ہنگامے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن اتنے ہنگامے کبھی نہیں ہوئے کہ اس میں خود اسرائیلی شہری شامل ہو جائیں, خود انگریز اس میں آ جائیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ آ جائیں, مطلب ٹیچر وہاں پہ آ جائیں اور اسرائیل کی اس طرح کھلے عام جو ہے اس کی جو ہے مذمت کی جائے. اب باقاعدہ طور پہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ایک جنگ کا دائرہ کر وہاں بڑھایا جا رہا ہے ایران کے ساتھ. ایران کے اندر جو آپ دیکھیں جو غزہ کے جو اسماعیل ہانیہ انہیں شہید کر دیا گیا, اور ابھی تک اسرائیل نے کھل کے تو بات نہیں کی, لیکن ایران نے کھل کے کہہ دی, اس کو مزمدہ ٹھہرا دیا کہ اس نے کہا ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے کریں گے, اور تھوڑا سا معاملہ ہوا بھی اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کے وہاں پہ, یعنی ایران کے صدر کے حلف ٹھنڈ سے ایک دو دن پہلے باقاعدہ طور پہ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ ہوئی. شام کے اندر باقاعدہ طور پہ میزائل پھینکے گئے, حزب اللہ کے اوپر ایک لیڈر تھا اس کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اسرائیل فلسطین کے دو لیڈر تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ لڑائی اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ کیونکہ اب وہ ایک اور کام کرنا چاہ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, تاکہ میں اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ وہ انہیں پھر یہ ایک اور ایک غصہ یہ بھی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر تم نے ایران نے اور سعودی عرب نے یمن کے اندر جنگ بند کر دی, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری
چائنا زندہ باد, چائنا زندہ باد.
اچھا اب یہ ہے کہ یہ بھی سارا معاملہ ہے. اب آپ نے اس بات پہ یہ سوال نہیں کیا مجھے کہ ساری دنیا نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی ہے, چین نے نہیں کی. چین بالکل نہیں بولا اس کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین نہیں سمجھتا کہ غلطی ہوئی ہے؟ چین بولا نہیں اس کے اندر. چین کے کام بڑے سالڈ ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا کہ چین نیور پٹ دیئر فیٹ ان دا مڈ. وہ جو کام کرتا ہے عمل کرتا ہے, آلویز کیپ دیئر کارڈ ود ہز چیسٹ. اس کا یہ مشن جتنی بھی میں, اس کی وقت نہیں ہے, میں آپ کو اس کی کئی اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں چین کے بارے میں. لیکن یہ بھی ایک خدشہ تھا. اب جنگ کو بڑھایا جا رہا ہے. اب ایران نے جب یہ اعلان کیا کہ خامنائی نے باقاعدہ طور پہ اجازت دے دی ہے کہ اسرائیل پہ حملہ کیا جائے گا, لیکن وہاں پر وقت اپنی مرضی کا وقت دیکھیں گے, اپنی مرضی کی جگہ دیکھیں اس میں حملہ کیا جائے گا. اب ان کو اس بات کا خدشہ. اس کے بعد فوری طور پر آپ دیکھیں تو کویت کی طرف سے, اردن کی طرف سے بیانات آگے کہ کوئی بھی میزائل یا کوئی بھی راکٹ جو ہے ہماری سرحد پر سے گزر نہیں دیں گے, یہ بھی سامنے آ گیا. اور اس کے بعد دیکھیں عراق کے اندر جو امریکی اڈا ہے اس کے اوپر حملہ ہوا. آپ دور نہ جائیں جرمنی کے اندر 23 جو امام بار گائے تھی ان کو باقاعدہ تلاشی لی گئی, باقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا. ایسے ہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے. جہاں جہاں یورپ کے اندر جتنی ایرانی بارگاہیں جتنی بھی ہیں, مطلب اس میں لازمی بات ہے اہل تشیع حضرات, اس میں اہل تشیع خالی ایران کے تو نہیں ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, ہندوستان کے سب کے ہیں, لیکن یہ کہ ان کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یعنی گویا یہ ایک امکان خدشہ پیدا ہو گیا ہے. یہ تمام خدشات کے یعنی سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سوچئے, جو تھیوری جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ یہاں پہ بھی ایسا فساد پیدا کیا جائے, اگر جنگ بار کل زور پکڑتی ہے تو پھر یہاں بھی جو لوکل لوگ ہیں مطلب وہ ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جو کہ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرتے
ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ مسئلہ سر, میں انفارچونیٹلی پاکستان میں خبروں کو توڑنا مروڑنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, ایک بریگیڈیئر صاحب کی, اللہ کا نیک بندہ, جس کا میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیں بات کر لیں, کوئی بات نہیں. تو عمران خان نے ان سے کہا کہ آپ قرآن کو ضامن کر کے کہہ دیں کہ 9 مئی میں نے کرایا. انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں کروں گا. عمران خان نے کہا تو پھر میں معافی بھی نہیں مانگوں گا. آج جب انہوں نے کہا ہے کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ پروو کر دیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہم نے کیا. میرے تین سوال. پہلا سوال آپ سے یہ ہے, 9 مئی سے لے کے آج 6 اگست آ گئی, مئی جون جولائی اگست سوا سال ہو گیا, آج تک کتنا بیڈ سسٹم ہے اس ملک کا کہ دے کوڈنٹ پروو کہ وہ 9 مئی کا ثانیہ کرانے والے کلپرٹس کون تھے. ٹھیک, سسٹم ان کا, PDM-1 ان کی, PDM-2 ان کا, فوج ان کی. نمبر 2, عمران خان صاحب نے کہا اب جب انہوں نے مشروط معافی مانگی, انہوں نے کہا مشروط معافی آپ پروو کر دیں کہ وہ ہم تھے اور اس کی بینیفیشری ہم تھے, میں معافی مانگ لوں گا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو پھر وہ غلط ثابت ہو جائیں گے, اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟
پہلی بات تو آپ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی خبروں پہ یقین نہ کیا کریں, आप क्या समिति
सर, मैं सोशल मीडिया पर यकीन नहीं करी, मेरे सामने न्यूज है, मैं आपके साथ न्यूज
बातों
अगर आपने मुझे कहा मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नो आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया कि सोशल मीडिया पे आप बिलीव ना किया करें, मेरे पास राइट न्यूज, डॉन, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, सारे के सारे मेरे सामने हैं। उन्होंने कहा मशरूत माफी मांगने का ऐलान उन्होंने,
मशरूत माफी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आप कह रहा हूँ कि आपने ब्रिगेड से कहा कि कुरान को जमर करके कह दें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब
मैंने ये सोशल मीडिया से नहीं सुना।
नहीं, मुझे बताएं कौन आदमी उस मीटिंग के दरमियान मौजूद था जिसने?
कोई भी मौजूद नहीं था, मगर
मुझे बात करने दें ना, आपने सवाल कर लिया मेरी बहन, मैं आपको एक एक लाइन दे रहा हूँ। मतलब उसमें आपका इत्तेफाक, आपका और आपके सुनने का इत्तेफाक होना या ना होना एक अलग बात है, मैं अपनी अपनी राय दे रहा हूँ। वहां तो कोई आदमी मौजूद नहीं था, वो तो वन टू वन मुलाकात थी, या वो मुलाकात याद हुई कि इमरान का बयान हो, इमरान खान का जहां मेरे पास आया था मैंने ये बयान दिया, वो बयान तो नहीं है, इमरान के साथ मनसूबों के बयान कहा जा रहा है। मतलब ये बात भी गलत, ब्रिगेडियर के साथ तो बयान देना ही नहीं, ना उसका बयान है, ऐसी बात है। हाँ, मुलाकात
आप कसम खा के कह सकते हैं कि ब्रिगेडियर की मुलाकात नहीं हुई?
मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो सुने ना, मैं जो बात कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आप क्यों कसम खिलवा रही है? मतलब मैं क्यों कसम खाने के लिए?
यही आप भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने भी कहा कि मैं कसम खा रहा
हूँ। सुनिए सुनिए मुझे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका की एक हदीस आपके सामने रख देता हूँ, उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं।
अरे नहीं, आप ये बात करें ना कि उसने
नहीं, आप हदीस सुननी पड़ेगी आपको, हदीस जो मैं आपको बता दूँ, कहते हैं कि उस आदमी के झूठा आने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी हुई बात को बगैर तहकीक के आगे पहुंचा दे।
मैं तो बगैर तहकीक की, मैं तो आपसे आपसे कहा आप कसम खा लेंगे नहीं मिले पर कीजिए।
मैंने आपको हदीस सुनाई है, हदीस मैं उस हदीस का मतन जो है उसके बारे में मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने आपको जो हदीस सुनाई है ये उसका मफहूम पूरी तरह बिल्कुल यही है। मैं ऐसी किसी बात पे तबसरा क्यों करूं जिसके मेरे पास कोई तस्दीक ही नहीं है, किसी बात खबर की तस्दीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मुमकिन है जो आप कह रहे हैं इससे मामला को और भी आगे बढ़ा, और ऐसी बात है, लेकिन ये है कि मेरे पास इसकी ऐसी कोई खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब ब्रिगेडियर की और इमरान की जो मुलाकात हुई है, मतलब है उसके दिमाग तीसरे आदमी को था ही नहीं को आगे बताए, या हाँ इमरान खान साहब ने अगर ये बयान दिया है, हाँ मैं फिर उसमें तबसरा करने को तैयार हूं, मैं कहूंगा हाँ जी इमरान साहब को खुद उसमें शामिल थे,
उनके तो आर्टिकल भी छप रहे हैं बाहर के अखबारों में, उनको देखिए। मैं आज दिन में सोच रही थी इमरान खान साहब को इतनी रिलैक्सेशन है, उनके तो आर्टिकल भी बाहर के अखबारों में छप रहे हैं।
देख लीजिए फिर आप, ये तो आप खुद ही कह रही, इसका मैं जवाब क्या दूंगा?
तो फिर फौजी उनके साथ है ना, अंदर गाते
चले आप एक जगह खड़ा, एक जगह खड़ा होकर अपना स्टाफ एक जगह
यार खड़ा, मैं खड़ी होगी बात करी, मैंने यही तो आपसे कहा कि भाई ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा मैं नहीं ये नहीं कहता। इमरान खान ने अब मशरूत माफी मांगी है, उन्होंने कहा है आप मुझे ये बता दें कि आपका सिस्टम कितना बैड है, मेरी आर्मी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, हाउ कम दे कुड नॉट प्रूव फॉर 15 मंथ्स दैट हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड 9th ऑफ मे।
आप मुझसे इस तरह सवाल करते हैं जैसे मैं यहाँ आसम मरी हर रोज आपने आका।
अच्छा आप मुझे इसका जवाब तो दे दें, गलत तो सुनो,
मैं जवाब देने लगा हूँ ना आपको जवाब देने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई और होनी चाहिए क्योंकि जंगे होती हैं, आलमी जंगे हुई लेकिन फैसले फिर बेस में बैठ के हुए, मुलाकात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, मतलब है। और गुफ्तगू के बाद जब बात चलेगी ना, जो मन से आपस में बात होती है तो फिर उसमें कुछ और सी बहुत सी गिरें खुलेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ निकलेगा, बाहर निकलेगा। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि वाकई अगर अभी तक मुझे ये नहीं पता ये साबित कर सके या नहीं कर सके, लेकिन जो मैंने सुना है कि इनके पास मुकदमा पूरे का पूरा तैयार है, उसमें सबूत भी है, टेस्ट भी है,
15 महीने में अभी मुकदमा ही तैयार है। कमाल,
या तो मुझे आप बात के क्लाइमेक्स तक जाने दिया करें, आप जाने मुझे देती नहीं है, आप मुझे रास्ते में रोक लेती है। मतलब मैं कहता हूं कि अब होगा क्या कि अब मैं नहीं चाहता कि दूसरे को ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेलिंग हो रही है। चलिए मेरा मुंह आप खुलवाना चाहती है, ये मीटिंग आज यही मीटिंग नहीं शुरू हुई, मीटिंगें और भी बहुत जगह हो रही है, मीटिंग मतलब इनके आपस में इस बातचीत तय करने के लिए। میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, یہ بات میں وسوخ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ, یہ بات میں یعنی سنی بات نہیں کر رہا, یہ وسوخ کے ساتھ میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ میٹنگیں اور بھی بہت جگہ ہو رہی ہیں تاکہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے, ملک سے باہر بھی ہو رہی ہیں, مطلب ساری باتیں ہو رہی ہیں, مطلب کہ کسی کسی اس معاملے کو ختم کیا جائے. اچھی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے, مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے مزید ایسی وار فساد پھیلے. ایک دوسری بات, اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا ایک واقعہ تو ہوا ہے جو ساری دنیا نے دیکھا, اب مقصد ہمارا مقصود یہ ہے کہ وہ کروایا کس نے, آپ کا سوال یہ کہ کس نے کروایا, جو ہوا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, آگ لگائی گئی کورٹ مارٹر ہاؤس کو, جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا, جو اسٹیچو تھے جو ان کو نقصان پہنچایا گیا, جو بھی ہوا جتنی بھی چیزیں ہوئی, مطلب سارے ملک میں ہوئی, ریلوے اسٹیشن پہ قبضہ کیا گیا, سارے جتنے معاملہ ہوئے یہ تو ہوئے, لیکن مسئلہ یہ کہ کس نے کروایا, کیسے ہو گیا, تحقیق تو اس بات کی ہونی چاہیے نا, مطلب ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایک پارٹی ہے وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق مکمل ہے, یعنی آئی ایس پی آر کیا پریس کانفرنس دیکھیں, یہ نہیں سیکرٹری جو اس نے کہا ہمارے پاس تحقیق مکمل ہے, اب یہ مسئلہ ہے یہ سول حکومت کا ہے کہ اسے کورٹ میں لے کے جا کے اس پہ کام کرے, انہوں نے سول حکومت میں ڈال دیا, سول حکومت سے پوچھا گیا, تار سے پوچھا گیا, اس نے اس کا جواب نہیں دیا, اس نے کہا یہ میری ڈومین سے باہر ہے. پھر ارفاز صدیقی ان کے جو سینٹ کے جو مسلم لیگ کے جو وہاں پہ ہے نمائندے ہیں وہاں پہ, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی سیکرٹ ہے اور اس بہت سے معاملات جو ہے سر ابھی نہیں سامنے لائے جا سکتے, بھائی قوم کا حق ہے قوم آپ سے پوچھے, اب انہوں نے کہا ہے اگر آئی ایس پی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری تحقیق مکمل ہوگی ان کے حوالے کر دی ہے, حکومت کا کام ہے کہ کیا جائے, مطلب تو یہ صورتحال آپ بھی دیکھ رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں, مطلب
اور
اس سے کیا نکالیں گے ہم اس کے اندر سے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, جو بھی آپ کہیں تاریخ ہی میری ایسی بھری ہوئی ہے. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے ہم نے آپ کی بات چیت کرائی, دنیا کے بدلتے حالات نہ معلوم ہمیں کس سمت لے کے جائیں گے, خدا کرے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور اہل اقتدار لوگ ہیں ترس کھاؤ پاکستان کے اوپر, مگر اب حالات بنگلہ دیش کے دیکھنے کے بعد طوفان رکے گا نہیں. آپ دیکھیے گا یوتھ جرمنی کا دیکھ لیں, یوتھ انگلینڈ کا دیکھ لیں, یوتھ آپ امریکہ کا دیکھ لیں, ابھی یہ کینیڈا کی اگر میں بات کرتی ہوں, کتنا عرصہ آپ یوتھ نے یونیورسٹیز کے سامنے کیمپس لگا کے رکھے ہیں, مہینوں تک یہ کیمپس لگا کے رکھے ہیں. تو مت سمجھیے گا پاکستان میں اگر 80% تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں نا, تو وہ تو بالکل ہی وحشیوں کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ.
میں آپ کی وجہ سے اس بات کی مکمل طور پر تائید کرتا ہوں کہ کب کیا ہو جائے یہ کسی کو خبر نہیں.
بہت شکریہ, سمجھ لو ابھی بھی سمجھ لو. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے ہم نے آپ کی بات کرائی. دیکھیے صاحب, ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا رویہ, ڈاکٹر صاحب کا اپنا طریقہ کار ہے, میرا اپنا طریقہ کار ہے, میں سچ کی کھوج میں ہوں, آئی لو پاکستان, دیٹس اٹ پیریڈ.
اگر آپ مجھے ایک,
میں نے اپنی سول کو نہ کبھی کسی کو اسکریچ کرنے دیا اور نہ میں کسی کو اسکریچ کر دوں.
اگر آپ مجھے ایک منٹ دے دیں تو میں ایک منٹ میں بات اپنی ختم کر دوں گا. آپ نے میرے جس آرٹیکل کا ذکر کیا یہ اس میں تاریخ آپ نے لکھی, یہ 2007 میں لکھا تھا.
میں ایگری کرتی ہوں سر, آپ نے 2007 میں آپ نے اس میں ایک لفظ کیا, میں بلکہ اکثر اوقات جماعت احمدیہ والوں نے کوئی اس کو کسی اور لحاظ سے, مطلب ہم ہر چیز سے سبق نہیں سیکھتے, ہم اس کو کوئی نہ کوئی وجہ دے دیا کرتے ہوتے ہیں. اگین میں, کیونکہ میں آئی ریپرزینٹ ایوری بڈی, اس لیے میں نے یہ لفظ کہا. مجھے آپ کا آرٹیکل بہت پیارا لگا, میں اس کو ڈیفینیٹلی کور کروں گی. تو آپ نے آخر میں جو وہ محترمہ بینظیر بھٹو ان کے آخر میں لکھا کہ یہ یعنی پاکستان کی طرف 4 اپریل 1979, یہ اور یہ تب کی بات ہے جب مجیب الرحمان صاحب کا واقعہ ہوا تھا, میرا خیال ہے تب آپ نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اور آج آپ اس کو کر رہے ہیں. اور جنرل یحیی خان 10 اگست 1980 فالج کی حالت میں ڈیتھ ہوئی, ذوالفقار بھٹو کے چھوٹے بیٹے نواز بھٹو 18 جولائی 1985 کو فرانس میں پرسرار موت کا شکار ہوئے, بینظیر کے دور اقتدار میں ان کے باپ کی آخری نشانی میر مرتضی بھٹو 20 ستمبر 1996 میں پولیس مقابلہ میں مارے گئے, اور اصلی قاتلوں کو آج تک بھی سراغ نہ مل پایا, لیکن آج بھی انگلیاں ان کے خاندان کے ایک فرد پر اٹھ رہی ہیں. بینظیر کے بھٹو کے قتل 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ہوا. یہ پاکستان کو توڑنے والے کرداروں کی غیر طبعی اور دردناک موت کی خبریں ہمیں عبرت کا سبق سنا رہی ہیں, جس میں توڑنے میں آپ نے شیخ مجیب الرحمان کے خاندان کے افراد, 15 اگست 1975, ابھی حسینہ واجد کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی اگست کا مہینہ ہی ہے, उसमें ये वाक्य हुआ, तो आपने कहा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की उनके साथ ये हुआ, जमात अहमदिया वाले अपने लिहाज से जोड़ते हैं, मैं ये कहती हूँ कि मेरे मुल्क का बहुत बड़ा हरज है, बहुत बड़ा हरज है, और मेरे मुल्क का हरज है। खुदा करे कि वो लोग जो पॉलिटिशियंस को काम नहीं करने
और ये कि मैं
और वो पॉलिटिशियंस 19 की हवस में
अपना देखिए 29 दिसंबर 2007 को ये कहा था, तो वक्त दूर नहीं जब ये कातिल हसीना वाज जो है इसको भी राष्ट्र मुल्क से भागना पड़ेगा, और इसके अपने बाप के जो बड़े बड़े बुत बनाए हैं इसको लोग पास पास कर देंगे, जूतों की बारिश होगी।
बिल्कुल आपने इसमें लिखा है, बिल्कुल लिखा है। आप क्या पेशींदगोई करते हैं आज जो लोग इक्तदार में है और जो पाकिस्तान के साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप इनके लिए क्या पेशींदगोई करते हैं?
यही कुछ होगा पाकिस्तान, क्योंकि एक मोजाती रियासत है, पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती करेगा उसका बुरा हाल होगा
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। चंद कमर्शियल, वेलकम बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
6478724900। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक यू 5196220660 quicktruckcube.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों। अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए, 416-786-6000, 416-786-6000।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट, 9052323663। विलेज टेस्ट।
नास्ते शाह, शाह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट मेगा मेला, हलाल फूड फेस्टिवल एंड प्रॉपर्टी एक्सपो 2024, सैटरडे अगस्त 10 एट ब्रैंटन फेयरग्राउंड। फन फूड एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए।
लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस बाय पाकिस्तानी एंड लोकल कैनेडियन सिंगर्स, शाजिया मंजूर, मलको, सारा अल्ताफ, जोजी अली खान, शबनम मजीद, मोहसिन शौकत अली, फैसल रजा, शगुफ्ता गजल, फलक एजाज एंड रणबीर चौहान।
ऑन सैटरडे अगस्त 10 एट ब्रैंटन फेयरग्राउंड्स, फ्री एंट्री।
फॉर स्पॉन्सरशिप एंड स्टॉल बुकिंग कॉल नासिर शाह 416-940-0339 या वक्कास सैयद 647-712-7000।
जी साहब नाजरीन, आपने सुना भी कि नासिर शाह साहब शाह एंटरटेनमेंट जो है वो अगस्त 10 को एक बड़ा रंगारंग प्रोग्राम लेके आपके लिए आ रहे हैं और अभी अब थोड़ी देर बाद हम नासिर शाह साहब से आपकी बातचीत भी करवाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ होंगे फजल वदूद साहब, फजल वदूद से भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे, हैरी सौजी से भी बात करवाएंगे और जैस्मिन परमार से भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। ये बातचीत अब से लेकर 8:15 बजे तक हम और आप साथ साथ होंगे। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं एक खूबसूरत गीत की जानिब। शाजिया मंजूर की आवाज में ये गीत है, पहले ये गीत समाप्त फरमाइए, इसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है। जी सामने नाजिम वेलकम बैक अगेन एंड 4:38 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और चलिए साहब अब आपकी पते की बात करवाने जा रहा हूं और बड़े वेरी एक्सपीरियंस पर्सन से आपकी पते की मजे की बात नहीं है तो मुझे से भी लोग होते हैं जो आपको बार दफा गलती से आते हैं कि यार इनसे मशवरा लिया जाए तो हमारी अगर फील्ड नहीं है वो तो हम तो आपको मशवरा दे देंगे मगर वो नीम हकीम खतरा जान वाला चक्कर है मगर एक ऐसा शख्स जिसके पास 28-30 साल का एक्सपीरियंस हो एक ही फील्ड में वो उससे मशवरा मांगेंगे तो फिर मैं हमेशा कहता हूं ना कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जो जवाब देंगे तो उनको पता है कि नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं फजल वदूद साहब की। फजल वदूद साहब 9056075000 इनका फोन नंबर है, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फजल भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
माजिद भाई वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है हमारे तमाम बहन भाई जो हमें सुन रहे हैं वो भी खैरियत वाफियत से हैं। और सुनाइए सर।
बताइए सर आप फजल वदू साहब एंड अपनी कंपनी के बारे में।
जी इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। अभी आपने थैंक यू फॉर गिविंग अ वेरी जेनरस इंट्रो, लेकिन यही है कि इस मार्च में 30 साल हो गए इस फील्ड में। पहले 23-24 साल जो हैं कैरियर के वो डिफरेंट रोल्स जिसमें मोस्टली अंडर राइटर इन टू डिफरेंट कैपेसिटीज अप टू द लेवल ऑफ अ चीफ अंडर राइटर सीनियर वाइस प्रेजिडेंट इस किस्म के, जिसमें कि अपने हाथों से हम लोग डिफरेंट प्लान्स अंडर राइट करते थे। उससे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग है, एक्चुअरियल डिपार्टमेंट के साथ मिलके वो प्लान बनाए जाते थे कि किस तरह से लोग पैसा लगाएं और कैसे ग्रो हो, उसमें टैक्स इम्पैक्ट वगैरह क्या हो। और अब पिछले 6 साल से जो है अपनी कंपनी बना के जो है पहले बैक एंड पे थे, अब जरा वो क्रिकेट की जुबान में फ्रंट फुट पे आपके इस रेडियो चैनल के तवस्सुत से बहुत सारी फैमिलीज को जो है वो बिल मुशाफा फेस टू फेस खिदमत का मौका मिल रहा है। कॉन्सेप्ट और आइडिया या मिशन हमारा यही है कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी मेजर रीजन ऑफ कमिंग टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री कनाडा इज फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर आर ओन सेल्व्स एज वेल एज फॉर आर फैमिलीज, आर जो अगली जनरेशन है उनके लिए हम लोग अपने मुल्कों को छोड़ के यहां पर वो आए। तो उसमें जो है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग जो है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कर लें और उसमें स्पेशली जब प्लानिंग आपको डायरेक्ट कॉस्ट को ही नहीं कर रही तो उसमें फिर अपने खुद तजर्बात करना जो है वो एक हमाकत है। और प्लानिंग हम अगर मैं बताता चलूं कि कैसे करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि जो चीजें 100% गारंटी होती है कि हमारी लाइफ में होनी है, हर एक की साहब लाइफ में होनी है, उन चीजों को अगर हम एड्रेस कर लें तो हमारी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। मैं वो दो चीजें अगर बयान करूं माजिद भाई तो वो एक टैक्सेस है। कोई भी शख्स कनाडा में टैक्स से जो है वो मुस्तस्ना या एग्जेम्प्ट नहीं है। और दूसरा जो शख्स आज जिंदा है किसी न किसी दिन उसको जाना है, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि अटल है। तो अगर हम इन दोनों चीजों का और इसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज कर लें तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाते हैं। टैक्स के लिए जो है वो ये है कि आप किसी भी सिनेरियो में हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्पेशली किसी भी किस्म का आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ टैक्सेस तो एनुअल बेसिस पे आपके अकाउंटेंट टेक केयर कर लेते हैं, लेकिन एक मेजर पोर्शन जो है टैक्स का वो डेफर हो जाता है फॉर अ फ्यूचर बिजनेस। चाहे आप फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आप ट्रक ओनर्स हैं, आप रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, गर्ज ये आप जैसे आप मीडिया के लोग हैं आपके अपने मीडिया हाउसेज हैं, सबके ऊपर टैक्सेस हैं, और इसमें से एक पार्ट एनुअल बेसिस पे आपके अकाउंटेंट मेक श्योर करते हैं कि हर किस्म की टैक्स डिडक्शन को, हर किस्म की टैक्स क्रेडिट को यूज करते हुए आपका टैक्स सेव किया जाए। दूसरा पार्ट जो है वो उनके बियॉन्ड देयर स्कोप ऑफ वर्क है, वो है स्टेट प्लानिंग पे। और ये इम्पैक्ट अगर मैं बिजनेस से हटके फैमिली लेवल्स पे बात करूं तो हमारी कम्युनिटी कनाडा में, और स्पेशली मैं कहूंगा कि जीटीए में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करती है, विच इज डेफिनेटली अ वेरी गुड टूल टू इन्वेस्ट इन। लेकिन ये है साहब कि उसका जो टैक्स पार्ट है, कैपिटल गेन टैक्स है, और सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी जब आपने ली हुई है तो उसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशन है, ये वो एरिया है जहां पे हम प्रॉपर स्टेट प्लानिंग करके आपका टैक्स सेव कर सकते हैं। नहीं तो माजिद भाई 53.53% याद रखने के लिए आधे से ज्यादा आपकी सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो सीआरए को जा सकती
और
है।
अब जो नए टैक्सेस का रूल्स आए हैं फजल भाई, उसमें
जी
तो मैं पूरी की पूरी चकनी को काट के दे दें।
देखिए जी, वो वही है ना, आगे से आगे जो है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हट के एक बात कर रहा हूं कि आपके जो ख्याल है ना जी के वो पेंशन फंड और ये और ओल्ड एज बेनिफिट्स, सर उसमें आपकी आज की डेट में 1200-1400 में बेसमेंट भी नहीं आती, और तो क्या बेनिफिट्स होने हैं। तो पॉइंट ये है कि इन चीजों को किसी ना किसी तरह से हमें बहुत हार्ड हिट पड़ने वाली है, उसकी प्लानिंग की सबको जरूरत है। तो इसकी ये हो गया टैक्स पार्ट। और एक चीज जो कि सबके लिए बड़ी कॉमनली सबको ही पता है वो ये है कि हर रोज हम सुबह को उठ रहे हैं माजिद भाई, और हर बंदे की ये दुआ भी यही है और ख्वाहिश भी यही कि जी आप वर्क हॉर्स बने रहें और 60-70 तक काम सब करते रहें। लेकिन अपने हर बंदा सुनने वाला अपने आप से पूछे कि क्या आपकी सराउंडिंग में कोई प्री मेच्योर डेथ का वाकया आपको नहीं पता, या कोई क्रिटिकल इलनेस जिसमें कोई हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, क्या ऐसे किसी साहब को या साहिबा को आप नहीं जानते कि जो इसमें से गुजरे हों। तो ये सारी चीजें हो रही हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उस पर चला जाता है। तो बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव वे से हम ये करवा देते हैं, और ऊपर वाला खैरियत रखे, आपको कुछ भी ना हो हमारी दिली दुआ है। तो एंड में साहब जितने भी उसमें आपने पैसे लगाए हैं, ऐसे प्लान मौजूद हैं कि वो सब वापस आ जाते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं माजिद भाई बजटिंग से। जब एक फैमिली हमारे साथ बैठती है तो पहले हम उन्हें हेल्प आउट करते हैं प्रॉपर हाउ टू बजट देमसेल्व्स। कई दफे प्रॉपर बजटिंग से ही उनके पैसे जो है ना निकल आते हैं, क्योंकि आई नो लॉट ऑफ टाइम हम करवाना तो चाहते हैं लेकिन हम ये सोचते हैं कि हाथ थोड़ा तंग है। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आज तंग है हाथ, कल को अगर खुदा ना खास्ता कमा ना पाए या जो अर्निंग हैंड है वो चला गया, तब कितनी तंगी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप अपने हेल्थ और लाइफ का जो रिस्क है उसे मिटिगेट कर लें और टैक्स प्लानिंग कर लें, तो इंशाल्लाह आपका और आपके प्यारों का फ्यूचर बहुत अच्छा है इस मुल्क में। माजिद भाई बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी योर टाइम।
फजल बहादुर साहब, बड़े डिटेल से आपने सब समझाया, एंड होपफुली हमारे जितने भी लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं जो इस बात को सुन रहे थे आपकी और आपको देख आपकी तस्वीर, ओके वो मेरा ख्याल है ये बड़ी यंग एज की तस्वीर है आपकी, मगर तस्वीर सामने है, टीवी पे आपकी तस्वीर आ रही है अभी, तो बस वैसे ही हैं आप।
नहीं नहीं, अब तो सिर्फ यंग एट हार्ट हूँ, वहां पे तो यंग नहीं रहे। तो जब कोई मिलेगा तो पास से गुजर जाएगा कि अगर वही पुरानी फोटो लगी हुई है तो काइंडली इसे भी चेंज कर दीजिए।
इसमें ना मैं अपने अपने हाथ से ना पेंसिल लेके, मैं क्योंकि आर्टिस्ट भी अच्छा हूँ, तो इसमें आपकी थोड़ी सी हल्की सी दाढ़ी बना देता हूँ मैं बस।
आप नहीं वो बनाइए और वो सफेद किसी ग्रे से बनाइएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
मैं सामने नाज़रीन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एंड फिर इल्तिजा है आपसे गुजारिश है कि देखें आप डजंट कॉस्ट एनीथिंग मगर किसी का एक्सपीरियंस से आप अगर हेल्प ले सकते हैं कुछ तो एक दफा आप फजल वदू साहब से पूरी फैमिली के साथ बिठा के डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सवाल करें आप बैठें और अपने बच्चों को बिठाएं क्योंकि बच्चे वेरी स्मार्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आप उनको बिठा के एक दफा पूरी क्या इनकम है आपकी कितनी सेविंग्स है आपकी क्या होने वाला है 50 साल की उम्र में आप कितना पैसा बना सकते हो आपको 65 में कितने पैसे की जरूरत है क्या है हम जैसे लोग तो आपको गलत राह दिखाएंगे मगर फजल वदू साहब विद हिज एक्सपीरियंस ही विल एक्सप्लेन टू यू ही विल टेल यू एंड ही शो यू ऑन हिज कंप्यूटर कि किस तरीके से आपको कितना पैसा आपकी जरूरत है और एंड अगेन ये जो प्रॉपर प्लानिंग की बात की थी ना इन्होंने मैं इसको अंडरलाइन कर दिया था जब ये शुरू में बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर प्लानिंग जो है वो उसको लेके चलना है साथ हमने एंड साहब मेरी गुजारिश अगेन फजल वदू साहब से शो प्रो के इनसे बैठ के बात करें 905-607-5000 जनाब फजल वदू साहब का फोन नंबर है इनसे आप कॉल करके बात जरूर करें अपॉइंटमेंट जरूर लें इनके साथ बैठें चाहे वो आपने हाफ एन आवर बैठना है बैठे इनसे एंड एंड रिजल्ट यू विल हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू डिडंट हैव इट बिफोर बहुत शुक्रिया सर आपका
थैंक यू वेरी मच मालिक भाई अल्लाह हाफिज जी अल्लाह
हाफिज वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम देता हूँ दो एंड विल बी राइट बैक
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है नहीं साहब आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी ट्रेवल इंश्योरेंस हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
अजीत सुनते हो
अब कह भी दो
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब
अब कुछ कहना वहना नहीं है बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर कॉल शिराज 416-792-8792
रिंगिंग बजिंग हिसिंग टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी साहब नाज़रीन वेलकम बैक अगेन एंड 4:51:08 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और जैसे मैंने आपसे कहा और कई दफा कह रहे हैं हम आपको कि नासिर शाह साहब एंड शाह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स अगस्त 10th को बस आने ही वाला है साहब 3 दिन बाद 10 अगस्त को ये मेगा मेला हलाल फूड फेस्टिवल एंड प्रॉपर्टी एक्सपो 2024 आपके लिए लेके आ रहे हैं और सिर्फ यही नहीं है और मजे की बात बाद में बताऊंगा आपको मैं और ये साहब एक पूरा का पूरा हुजूम है आर्टिस्टों का टॉप के आर्टिस्ट हैं जो आपके लिए शाह साहब आपको पता है कि जब भी प्रोग्राम कराते हैं एकदम नंबर वन टॉप का प्रोग्राम होता है इनके जितने भी प्रोग्राम्स आपने सुने हैं पहले आप देख लीजिए आपने देखा भी होगा चाहे वो मिल्टन का हो चाहे ब्रैम्पटन का हो चाहे मिसागा का हो चाहे टोरंटो का हो जहां पर भी बरसा बरस से प्रोग्राम करा रहे हैं और उन प्रोग्रामों की आप वो देख लें कि कहां पर 20,000-25,000 आदमी तो कुछ भी बात नहीं है ऐसे वक्तों में जनाब आली और मजे की बात जो मैंने कहा था ना आप बाद में बताऊंगा फ्री एंट्री साहब और क्या चाहिए आपको यू डोंट हैव टू पे अप एनी अपनी पूरी फैमिली अपने यार दोस्तों के साथ आपके अगर मेहमान अमरीका से और पाकिस्तान से आए हैं उनको भी साथ लेके आ जाइए साहब कोई टिकट नहीं है कोई कुछ नहीं है मेरे साथ शाह साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाह साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर कैसे हैं आप बताइए जरा इसे मेगा मेला एंड हलाल फूड फेस्टिवल प्रॉपर्टी एक्सपो 2024 अगस्त 10 को जो कराने जा रहे हैं इसके बारे में बताइए साहब
जी पहले तो माजिद भाई वालेकुम सलाम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की और हमने जो कोशिश यही की है भी हमेशा एक एक से एक बढ़ के किया जाए, कुछ भी जो भी किया जाए। लास्ट ईयर ओवर 25,000 लोग आए थे और लोगों ने पूरा साल हमें कॉल कर करके अप्रिशिएट किया और कहा कि इससे बड़ी गैदरिंग और इससे अच्छा सेटअप आप हमने कभी नहीं देखा। अब उससे भी बेटर गैदरिंग होगी, उससे भी अच्छा सेटअप होगा, क्यों हमने जो कोशिश किया भी हर चीज वो आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मेले को मेले की तरह कर रहे हैं। ये मेला आप आएंगे आपको एक सेकंड फील बोर नहीं होगा भी आप गलत जगह पे आ गए या आपने कोई गलत डिसीजन लिया यहाँ पे आने का। नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ऑन एयर प्रॉमिस कर रहे हैं भाई आपको नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट मिलेगी। 10 सिंगर जो कि हमारे रूबरू होंगे और 10 सिंगर जो है वो आपको पता है वहां पे हमने एक से एक बढ़ के नाम अगर मैं लूं तो कम नहीं है, कोई सिंगर एक से कम नहीं है दूसरे से। तो वो क्या है, शाजिया मंजूर से स्टार्ट करते हैं। शाजिया मंजूर है, शाजिया मंजूर के साथ साथ वो मलकू है, मलकू के साथ जोजिली खान है, शबनम मजीद है जो 10-12 साल के बाद आ रही है, शबनम मजीद है और इसके अलावा सारा अल्ताफ है और बहुत सारे सिंगर आपके रूबरू होंगे।
मैं गिनाता हूँ मोहसिन शौकत अली खान साहब है, फैसल रजा है, शगुफ्ता गजल है, फलक इजाज है, रणबीर चौहान है और कितने नाम लेता हूँ।
10 तारीख होगी और 10 सिंगर होंगे और रात 12 बजे फिर 11 को मेरी बर्थडे है आपको पता है, फिर मैंने केक काट रहा है।
क्या बात है
वो भूलना नहीं है, वो भूलना नहीं है, वो भी धूम धमाके से कर ले। तो कहने का मकसद एक ही है भी अगर आपने ये मेला मिस कर लिया तो समझो जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली। अब इससे बड़ी बात क्या कर सकता हूँ, ये मेला आपके लिए सजने जा रहा है और आपके लिए ये फ्री है बिल्कुल, इतने ज्यादा सिंगर और बिल्कुल फ्री। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हम कोई भी काम करते हैं अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं, मेरी कम्युनिटी ने हमेशा मेरा बड़ा साथ दिया है और जब भी मुझे जरूरत पड़ी है, जब भी कोई मैंने गैदरिंग की है, एक आवाज पे मेरी कम्युनिटी पहुंची है और हमेशा प्रूव किया है वी आर टुगेदर। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है वाजिब भाई, ये हमारा आप कह लो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया और हम ये आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत है, इतनी ज्यादा सिंगर लेकर आना, एक सिंगर भी अगर यहाँ पे किसी ने करना और इवन लोकल सिंगर आपने कोई प्रोग्राम करना तो वो भी 10 बार सोचता है यार पैसे कहाँ से आएंगे, ये कि भाई अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है तो हम आपके लिए कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला हमें इस काबिल ना बनाता तो हम क्या कर सकते थे। तो ये बड़ा जरूरी है, ये आपके दुआओं के सदके हुआ है, जो भी हुआ है सोफार आपकी दुआओं के सदके ही हमने जितनी भी अचीवमेंट की है अभी तक वो आप लोगों की वजह से। आप लोग हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं है तो हम भी नहीं है। तो इसलिए आपको पहुंचना है कहाँ पे, ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड जो है बिल्कुल आप ये कह ले 410 मेफील्ड के कॉर्नर पे ही पड़ती है। आप जैसे ही 410 से उतरेंगे तो आपने वेरी मेफील्ड लेना है लेफ्ट, जैसे लेफ्ट लेंगे वेरी फर्स्ट जो राइट है वो हार्ट लेक है, हार्ट लेक और 410 से आप कह लो 2 या 3 मिनट की ड्राइव है जो ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड है। तो इसलिए आपको हाईवे उतरते साथ ही ग्राउंड मिलेगी, आप गूगल पे डालिएगा बड़ा इजी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन या स्पॉन्सरशिप या स्टॉल बुकिंग तो आप वकास सैयद को कॉल करें 647-712-7000। और माजा भाई हमने जो अपनी माए बहनों के लिए एक स्पेशल ऑफर लगा रखी है, सिर्फ $250 में आपको ज्वेलरी और कपड़ों का स्टॉल मिलेगा। ज्वेलरी और कपड़ों का अगर स्टॉल चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपकी एक दिन की इनकम इक्वल टू 1 मंथ हो तो आपको ये चांस लेना ही पड़ेगा। तो मुझे खुशी कब होगी, मुझे ये खुशी होगी जब आप वहां पे आएंगे और आप लोग वहां पे पैसे बनाएंगे और अगले साल मेरे लिए दुआएं करते रहेंगे, मुझे तब खुशी मिलेगी। बाकी तो देखें ये आपके लिए मेला हम सजाने जा रहे हैं, आपके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम इकट्ठा कर रहे हैं, सारा लगा रहे हैं, अभी इतना बड़ा स्टेज, 2 बड़ी स्क्रीनें 20-20 फीट की बड़ी स्क्रीनें लगेंगी LED, फिर साउंड होगा, स्टेज होगा और फिर स्टॉल्स खाने पीने के हर तरह का स्टॉल आपको मिलेगा, गन्ने का रस मिलेगा, गोलगप्पे चाट पापड़ी आप कोई भी नाम ले आपको फूड खाने को मिलेगा, फिर ओपन माइक कैफे का स्टॉल आपको मिलेगा, अगर आपने बारबेक्यू बेस्ट बारबेक्यू खाना है तो ओपन माइक कैफे भी वहां पे होगा, हलाल फूड के काफी स्टॉल्स होंगे, फिर आपको ये भी अंदाजा है वहां पे क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सपो है उसमें रियल स्टेट के स्टॉल्स होंगे, मॉर्गेज के स्टॉल्स होंगे, बिल्डर वहां पे आ रहे हैं वो अपना अपना डिस्प्ले करेंगे जो भी वो बनाते हैं कैसे वो, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, हमने उस चीज को भी ध्यान में रखा है, इमिग्रेंट्स ने घर बाय करना ही करना है, जब घर बाय करना है तो मॉर्गेज भी लेनी है, तो उन लोगों के लिए भी फ्री इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे भी किस तरह कैसे घर ले सकते हैं। तो माजे भाई इससे बड़ा मौका नहीं मिलना, अगर आप चाहते हैं वाकई इनकम आपकी अच्छी हो, प्लस आप चाहते हैं कि आपको इंटरटेनमेंट बेस्ट मिले, तो आपको ये दिन याद रखना है। ये दो दिन बाद जो सैटरडे आ रहा है, दिस कमिंग सैटरडे, ये 10 तारीख बनती है, 10 तारीख को वहां पे आपने पहुंचना है ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड। कोई भी स्पॉन्सर अभी भी अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो इस मौके से जरूर फायदा उठाइएगा, क्योंकि हमने इतना ज्यादा करोड़ के सामने 8-10 दफा अपने स्पॉन्सर का थैंक यू करना है, अपनी सारी कम्युनिटी का थैंक यू करना है। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा, आपकी प्रमोशन जो बहुत ज्यादा होगी आपका, अगर कोई भी स्टॉल लगाते हैं, कोई भी अगर आप वहां पे हमें स्पॉन्सर करते हैं तो आपकी जो प्रमोशन है वो बेस्ट होगी। नंबर एक बार फिर 647-712-7000 पे आप जरूर कॉल करके अपना बताइएगा भी अगर आपने स्टॉल लगाना है या स्पॉन्सर करना है, और लोकेशन के बारे में अगर जानना है तब भी आप इसी नंबर पे कॉल।
आज के बाद ना हम अब डेट अनाउंस नहीं करेंगे
जी
सर, आप हमने कहा है कि सैटरडे को आना है, बस आपने
बस सैटरडे को आना है, ये
ठीक है ना जी। हाँ अब छोड़ देंगे, 10 को है, 11 को है, 12 को है, 15 को है, आपने इस सैटरडे को आना है साहब, ये
सैटरडे पॉइंट आउट करें कौन से सैटरडे को आना है,
इस सैटरडे को आपने पहुंच जाना है साहब। कहाँ जाना है आपने? आपने पहुंचना है ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड, 12940 हार्टलेक रोड, कैलेडन। कैलेडन क्या ये संगम है, ब्रैम्पटन कैलेडन।